اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی کرم نوازی اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم لیکچر نمبر 30 کا آغاز کریں گے. صفحہ نمبر ہے 255. یہ اب تک آپ کا اتنا تو ذہن بن گیا کہ یہ سارا نظام جو ہے یہ ہمارے اندر ہے، ہمارے شعور میں ہے. یہ شعوری نظام فکر، باطنی دنیا، فکری دنیا، اس سارے کا لغوی ایک لفظ میں اگر آپ اظہار کریں تو وہ بنتا ہے شعور. اب یہ شعور اور علم لدنی، شعور اور علم لدنی کا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے؟ اب اس کو بہت مختصر لفظوں میں میں پہلے تھوڑا سا ایک تعارفی جملہ عرض کر دوں کہ شعور خود کو جس طرح سے آرگنائز کرتا ہے، ارینج کر لیتا ہے، وہ ہمارا شعور بن جاتا ہے. اور علم لدنی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے انسپائر کیا جاتا ہے، جو کہ خالق ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کس طرح سے آرگنائز کرنا ہے. اب ایک آپ کی چاہت ہے اور ایک اس کی چاہت ہے. یہ اس کی چاہت سے مراد یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ارینج یور تھنکنگ پیٹرن، اپنے تھنکنگ پیٹرن، اپنے تھنکنگ پیراڈائم کو، اپنے تھاٹ پیٹرن کو کیسا بنانا ہے. ایک آپ اپنی مرضی سے بناتے ہیں تو وہ شعور کہلاتا ہے، اور جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گائیڈنس، ریویلیشن یا انسپائریشن کے مطابق بناتے ہیں تو وہ انسپائریشن جو آپ کو یہ گائیڈ کر رہی ہے کہ شعور کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں علم لدنی، یعنی اسے کیسے کام لینا ہے، یوں کہہ لیجیے. اس کے لیے حضور مرشد کریم نے کیا بات فرمائی ہے، نو انسانی میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر کے افراد کی توجہ ستر پوشی کی طرف رہتی ہے. کہاں رہتی ہے؟ ستر پوشی. اے چھیم ہو رہی ہے، بس چھپاؤ اس کو، غور کریں. اور ستر پوشی کے عمل کو اتنی زیادہ مرتبہ دہرایا جاتا ہے کہ چھپانا انسان کی طبیعت کا تقاضا بن جاتا ہے، غور کریں. یعنی یہ ہے شعور. شعوری عمل کیا ہے؟ کہ سارے گھر کے افراد بچے کو شیم شیم کر کے تو اس کو ستر پوشی کی طرف متوجہ رکھتے ہیں، اور یہ عمل اتنی دفعہ دہرایا جاتا ہے کہ بچہ کبھی غلطی سے واش روم سے ویسے ہی نکل آئے تو ساروں کو مصیبت پڑ جاتی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہاں یا نہیں. اب اس تقاضے سے، یعنی یہ چیز چھپانا انسان کی طبیعت کا تقاضا بن جاتا ہے، غور کریں. طبیعت کہتے ہیں تبا، چھپی ہوئی چیز، یہ چھپائی ہو گئی، چھپ گیا، اب یہ اس کی طبیعت کا تقاضا بن گیا. طبیعت کا تقاضا کیا مطلب ہوا؟ کہ طبیعت کی ڈیمانڈ بن گئی، ضرورت بن گئی، کہ اس تقاضے سے انسانی زندگی میں ستر پوشی کے ساتھ ساتھ پھر عیب پوشی کے جذبات بھی کار فرما ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے بندہ، یعنی اپنی غلط باتوں کو چھپاتا ہے کہ یہ پتہ نہ چل جائے. وہ بات ایک کر رہا ہے، ماں کو نہ پتا چل جائے، باپ کو نہ پتا چل جائے. وہ دیکھتا ہے کہ ماں ایک بات کر رہی ہے اور پھر بچے کو کہتی ہے کہ ابو کو نہیں بتانا. مطلب ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ بات اگر ان کے والد صاحب کو پتا چلے گی تو ان پہ برا، یعنی کہ بوجھ پڑے گا یا ناگواری کا احساس ہوگا. وہ اس جذبے سے منع کر رہی ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ وہ ستر پوشی کے بعد عیب پوشی سیکھ رہا ہے. اب انسان اپنی غلطیوں کو چھپا کر خود کو مثالی بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے. یہ ایک اور جملہ نوٹ کرنے کا، کہ یہاں سے سارا نظام टेढ़ा होना शुरू हुआ, गलतियां करेंगे तो सीखेंगे। ये जुमला आपने कभी किसी माँ बाप को कहते नहीं सुना होगा कि इंसान तो सीखता ही गलती से है, लेकिन इंसान क्या कर रहा है, वो अपनी गलतियों को छुपा के अब खुद को मिसाली बनाकर पेश कर रहा है कि मेरे से अच्छा बंदा तो है ही कोई नहीं। लेकिन जब वो ये कह रहा है कि मैं बड़ा अच्छा बंदा हूं, तो खुद उसके अपने कबर्ड में कितने स्केलेटन्स पड़े हैं गलतियों के, हमाकतों के, उनकी तरफ जाहिर है कि वो अंदर से तो पिंच कर रहे हैं, लिहाजा बात में असर नहीं रहता। तो गलतियों को छुपाकर उनकी इस्लाह नहीं कर रहा, गौर करें जरा, गलतियों को छुपा रहा है, गलती से सबक सीखकर उनकी इस्लाह नहीं कर रहा, सिर्फ उनको छुपाकर खुद को मिसाली पेश कर रहा है। यही चीज आगे चल के पूरी सियासत कहलाती है। तो यही इख्फा, अब देखिए गौर करें, ये हजूर कलंदर बाब औलिया और मुर्शिद करीम क्या बात हमारे शऊर में दाखिल कर रहे हैं कि यही इख्फा, ये जो छुपाने का अमल है, ये जिंदगी में इर्तका का सबब बनता है। गौर करें, ये छुपाने का अमल, अब इसको आप ये नहीं कर सकते कि ये बंद कर दें, नहीं, एंगल को ठीक करना है। ये इसको प्रॉपर अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये इर्तका का सबब बनता है। और उसकी देखे ना, अब जानवरों में ये इख्फा नहीं है, उनके सारे आमाल एक दूसरे के सामने आया है, वो ना सतर पोशी करते हैं ना कोई पर्दा पोशी करते हैं, लिहाजा उन्हें ऐब पोशी की भी जरूरत नहीं रहती। लेकिन ये हैवानी सतह है। इंसान को प्राइवेसी का हुक्म दिया गया, और ये इख्फा जो है ये कुरान ही के अहकामात के जेरे असर है। ये बात क्लियर रखें जहन में, ये खुदा ना खासा कोई तनकीद नहीं की जा रही, कोई ऐसा मुआशरे की बात नहीं होने लगी कि जी आप अपने आप को बिल्कुल इससे लेकिन वो जो जहन पे उसकी नाजायज जकड़बंदी है और उसका वो फर्क है, वो वाजे किया जा रहा है। अब हैवान चूंकि दूसरे हैवान की जिंदगी से वाकिफ है, इसलिए वो खुद को दूसरे हैवान के सामने मिसाली बनाकर पेश नहीं करता। इंसान खुद को दूसरों के सामने मिसाली बनाकर पेश करता है तो क्या होता है कि वो जब वो नित नए रास्ते, नित नई बातें करता है, नित नई इजादात का, क्योंकि वो खुद को बेहतर इंप्रूव करके दिखाना चाह रहा है, तो वो नेगेटिव जज्बा किस तरह से पॉजिटिविटी को राइज कर रहा है कि आप अपनी गलतियों को छुपाते हैं। इस छुपाने के इख्फा के जज्बे से क्या होता है कि आप किसी के सामने कोई नई बात कहना चाह रहे हैं ताकि वो अगले का ध्यान आपकी कमजोरी या गलती पे ना जाए। तो ये चीज जो है ये नित नए रास्ते और नई नई इजादात का सबब बन जाती है। आप गौर करें कि अक्सर साइंटिस्ट, अक्सर मुजिद बचपन में गबी और कुंद जहन माने गए, और क्या हुआ कि फिर उन्होंने खुद को मिसाली बनाकर पेश करने के लिए अपने गबीपन को, अपने इसको क्या कहते हैं, कुंद जहनी को छुपाने के लिए कोई बात नहीं ईजाद कर दी, नई बात कह दी। तो ये इख्फा जो है ये नई नई इजादात, देखें जहन को कितनी वसत अता हो रही है, कितना वसी किया जा रहा है कि कहां से बात शुरू की और कहां तक जाके उसका फैलाव दिखा दिया। ये इंसान की ऐसी कोशिश और जिद्दोजहद है कि जिस जिद्दोजहद और कोशिश से वो इल्मे हसूली से गुजरकर इल्मे हजूरी में दाखिल हो जाता है, यानी पहले वो इल्मे हसूली में कोशा होता है, कोशिश करता है, फिर उसमें एक्सेल करता है, जब वो उस इल्मे हसूली में आगे बढ़ जाता है तो तब जाके वो इल्मे हजूरी में दाखिल हो जाता है। अब ये जो कोशिश है ये तमाम तबई अलूम का मजमू है। ये जो इंसान की कोशिश है, कौन सी कोशिश, इख्फा वाली, खुद को मिसाली बनाने वाली, ये कोशिश जो है ये तबई अलूम का मजमुआ है, ये तमाम तबई अलूम इसी कोशिश के नतीजे में जमा हुए, मुजतमा हुए। नए नए रास्तों का तलाश करना, नए नए अलूम की दाग बेल डालना, और फिर उन अलूम से नित नए फलसफों का जाहिर होना, ये सब इर्तकाई अवामिल हैं। और इर्तकाई अमल को, इस इर्तकाई अमल को इल्म हसूली कहते हैं। यानी आप इल्म में अगर ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हैं, दर्जा ब दर्जा आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको इल्म हसूली कहते हैं। लेकिन ये बात महले नजर रहे कि इल्म हसूली की बुनियाद पर जितने भी फलसफे वजूद में आते हैं या इजादात होती हैं, इनका बहुत बड़ा हिस्सा मफरूजात और कयासात पर मुश्तमिल है। और जहां मफरूजात और कयासात का अमल दखल नहीं है, यहां पे लफ्ज नहीं को लिख लीजिए, जहां मफरूजात और कयासात का अमल दखल नहीं है, उस इल्म को इल्म हजूरी कहते हैं। यहां पे लफ्ज नहीं मिसिंग है, यानी लिखने में किताबत की गलती। इल्म हजूरी फिक्र की गहराइयों में तलाश किए जाते हैं। ये इल्म फिक्र की गहराई से मिलता है, जबकि इल्म हसूली तबई कवानीन के पाबंद है। और तबई कवानीन यानी ये तबई तिबियात वाला तबई, फिजिकल तबई कवानीन, फिजिकल साइंसेस, फिजिकल लॉज, फिजिक्स के लॉज, ये फिजिकल रैल्म है इल्मे हसूली। ये तबई कवानीन यानी फिजिकल लॉज को उबे करता है, और ये तबई कवानीन यानी ये फिजिकल लॉज जो हैं, ये रूहानी कवानीन का इत्तबा करने पर मजबूर है। ये फिजिक्स के सारे कवानीन के पीछे, उनकी तह में असल में रूहानी कवानीन है। अब देखिए ना, हम वहां तबई अलूम पे रुक गए, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि हमारा जहन शऊर फिजिकल रैल में महदूद हो गया। लेकिन अगर हमें ये आगही मिल जाए, ये ध्यान इस तरफ चला जाए कि इन कवानीन के पीछे कौन है, कौन सा दर्जा है, तो लामहाला हमारा जहन इल्मे हसूली से गुजर कर इल्मे हजूरी तक चल दाखिल हो जाएगा। अब हर इंसान की जिंदगी दूसरे इंसान के लिए एक सरबस्ता राज है, और हर इंसान दूसरे से इंसान से नावाकिफ है। ये नावाकफियत ही इंसान की जिंदगी का राज है, ये नावाकफियत ही इंसानी जिंदगी का राज है। इंसान इंसानी जिंदगी का ये राज हर इंसान को अपनी गलतियों को छुपाने की तरफ माइल करता है। बेतबा हर इंसान की एक कोशिश होती है कि वो खुद को दूसरों के सामने अच्छा पेश करे और लोगों के सामने उनकी गलतियां जाहिर ना हो। हर इंसान ये बात जानता है कि मेरी जिंदगी के बारे में मेरे अलावा दूसरा कोई शख्स नहीं जानता। इसका मतलब यह हुआ कि इंसानी जिंदगी का इख्फा इस तरह से इर्तका का सबब बनता है। अब हैवानी जिंदगी में इख्फा नहीं है, इंसानी साख्त का शऊरी इम्तियाज, ये जो इंसान की बनावट है, उसकी फॉर्मेशन है, इंसानी साख्त का शऊरी इम्तियाज, ये उसकी जो डिस्टिंक्शन है, ये उसकी जो दूसरों से वो फर्क है, ये उसको अलूमो फनून की तरफ मतवज्जो करता है। ये है पूरा अलूमो फनून, इनकी उसकी तवज्जो कैसे आती है, क्यों वो इल्म का हसूल चाहता है, ताकि वो दूसरों से खुद को बरतर या बेहतर साबित कर सके। अब ये नौ इंसानी दो अलूम से वाकिफ है, दो किस्म के अलूम से वाकिफ है। अब एक इल्म वो है जो मफरूजात, कयासात और फिक्शन पर कायम है। अब एक इल्म वो है जो कि अजम्पशंस पर, मफरूजात, सपोजिशंस पर, और कयासात, कंजक्चर, यानी अंदाजों पर। कयास है, मेरा अंदाजा ये है, और फिर फिक्शन जो कि रियलिटी नहीं है, उस पे बेस्ड है। लेकिन दूसरा इल्म हकीकत पर मबनी है। उस इल्म में फिक्शन, मफरूजात और कयास शामिल नहीं होता। जो कुछ है वो हकीकत है, और ऐसी हकीकत जिसमें तगैयर और तबदल नहीं होता, यानी वो इल्म जिसमें फिक्शन, मफरूजात और कयासात शामिल नहीं होते। जाहिर है कि वो बाकी क्या बचा, बाकी हकीकत बची। तो वो नॉलेज जो कि रियलिटी बेस्ड है, जाहिर है रियलिटी में तगैयर और तबदल नहीं होता, तगैयर और तबदल चेंज नहीं होता, रद्दो बदल नहीं होता, यानी जो चीज जैसी है वो हमेशा वैसी ही रहेगी। पानी अजल से पानी है, वो अब तक पानी ही रहेगा, ये एक हकीकत। लेकिन वो दरिया का पानी बन गया, नदी का पानी बन गया, ये गली का पानी, नाली का पानी बन गया, ये चेंज है। पानी की हैत में, उसके जायके में, उसकी खुशबू में तब्दीली होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने उसको क्या रंग दे दिए, दैट इज ऑल अप टू यू, राइट। अब ये दोनों किस्म के अलूम जो हैं, इनकी असल क्या है, इल्मे लुदुन्नी। अब ये इल्मे लुदुन्नी क्या है, ये इल्मे हजूरी और इल्मे हसूली दोनों को एक दूसरे से मुतारिफ कराता है। यानी इल्मे लुदुन्नी इल्मे हसूली और इल्मे हजूरी के दरमियान ब्रिज का काम करता है। इल्मे लुदुन्नी के हकायक इल्मे हसूली की गहराइयों में तलाश किए जाते हैं। इल्मे लुदुन्नी के हकायक, इसी ये जो इल्मे हसूली है, इसकी गहराइयों में जब आप किसी चीज पे गौर करते हुए उसकी गहराई में उतर जाते हैं, तो गोया हम पहले दर्जे पे इल्मे लुदुन्नी के हकायक से आशना होते हैं। मसलन हम अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर करते हैं। अब अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर की बात आई, जब पानी का तज़करा करते हैं तो पानी के खदो खाल, पानी का इस्तेमाल, पानी का बहना, उसका सिमटना और उसका बहाव, ये सब इल्मे हसूली के दायरे में आते हैं। यानी आप पानी से मुतालिक पूरे इल्म को हाइड्रोलॉजी कहते हैं, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी यानी पानी से रिलेटेड कवानीन का मुतालिया, ये सब इल्मे हसूली के दायरे में आते हैं। लेकिन जब पानी की माहियत को तलाश करते हैं, माहियत किसकी, बनावट क्या है, ये है क्या, तो इस तलाश को करते करते हम जिस नतीजे पर पहुंचेंगे, जो असली होगा, हकीकी होगा, और फिर तलाश के नतीजे में हासिल इल्म को इल्मे हजूरी कहेंगे। तो अल्लाह ताला ने قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنی نشانیوں پر غور کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے. تمام طبعی علوم اور تمام علوم جو اس دنیا میں رائج ہیں وہ سب روحانی قوانین کا اتباع کرتے ہیں. مثلا جب ہم پانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے. جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ پانی نشیب میں کیوں بہتا ہے اور پانی کے اندر وہ قوتیں کس طرح مخفی ہیں, تو پانی کی اس فطرت سے ہمیں روحانی قوانین کا سراغ مل جاتا ہے. اب جیسے جیسے ہم گہرائی میں تفکر کرتے ہیں ہمارے اوپر نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں, اور یہ انکشافات رفتہ رفتہ ہمیں روحانی قوانین کی حقیقت تک پہنچا دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا, پانی کی فطرت ہے نشیب میں بہنا, تو یہ درخت کی جڑ میں پہنچ کر اوپر کو کیوں چڑھنا شروع کر دیتا ہے؟ یہ درخت کی پھننگ تک جاتا ہے, وہ چوٹی کے آخری پتے تک. تو یہ پانی کو, اس کا مطلب ہے کہ صرف نشیب میں بہنا کافی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی اور صلاحیتیں بھی ہیں, یہ اوپر بھی چڑھتا ہے. تو جب آپ غور و فکر کریں گے, اللہ کی نشانیوں پہ غور کریں گے, تبھی ہمیں ان باتوں پہ گہرائی میں تفکر کرنا آئے گا. اب علم حضوری اور علم حصولی میں ہم اس وقت فرق قائم کر سکتے ہیں جب ہمیں علم لدنی سے واقفیت ہو, اور یہی وہ علم ہے جو انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے. یعنی نبی کسی دنیاوی مدرسے میں, کسی اسکول میں, کسی استاذ کے سامنے زانوئے تلمز طے نہیں کرتا, یعنی کسی ٹیچر سے سیکھتا نہیں ہے. تو پھر وہ کون سا علم ہے جو ان کو حاصل ہوتا ہے؟ تو وہ علم لدنی حاصل ہوتا ہے, اور یہی وہ علم ہے جو انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے. علم لدنی جب انبیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے تو وہ علم نبوت کہلاتا ہے, اور علم نبوت کے زیر اثر جب اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے تو علم لدنی کہلاتا ہے. یعنی علم لدنی ایک طرف علم حصولی کی گہرائیوں کو جانتا ہے, دوسری طرف آپ کو علم حضوری سے متعارف کرا دیتا ہے. اب اولیاء اللہ کو یہ علم الہام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے, اور پیغمبروں کو یہ علم وحی کے ذریعے منتقل ہوتا ہے. اب الہام کے ذریعے انسپائر کیا جاتا ہے, لیکن پیغمبروں کو وحی کے ذریعے منتقل ہو جاتا ہے. اب اس بات کو, اس کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ تین قسم کے علوم کا تذکرہ ہم نے یہاں تک پڑھا کہ علم حصولی ہے, علم لدنی ہے, اور علم حضوری ہے. علم حصولی وہ جسے آپ اپنی کوشش سے دنیاوی طور پہ کمپائل کر کے جمع کر کے سیکھتے اور حاصل کرتے ہیں, وہ اس کے پیچھے راز پہلے بتا دیا کہ اخفا, کیونکہ ہم چھپاتے ہیں اپنی غلطیوں کو, کمزوریوں کو, خامیوں کو, تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے ہم نئی نئی باتیں کرتے ہیں, لہٰذا نئی نئی باتوں سے ایک نئی راہ مل جاتی ہے, تو وہ نیا ایک علم مدون ہونا شروع ہو جاتا ہے, مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا جمع ہو کر ایک برانچ آف نالج بن جاتی ہے, اور یہ جناب علم حصولی کہلاتا ہے. اس کی بنیاد ہے قیاسات, مفروضات اور فکشن. اب دوسری قسم ہے علم کی, وہ ہے علم لدنی, جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات, ایک آیات ہیں قرآن حکیم کے اندر جو آیات ہیں, جو جملے ہیں ان کو آیات کہا جاتا ہے. دوسری طرف آیات کا مطلب ہے نشانی, نشان راہ, یعنی کہ جب ہم نشانیوں پہ غور کرتے ہیں, یا اللہ کی مخلوقات, یا اللہ کی مصنوعات, یا اس کی تخلیقات پہ غور کرتے ہیں, پانی پہ غور کرنا, ہوا پہ غور کرنا, روشنی پہ غور کرنا, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اور قرآن میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. تو جو لوگ اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر سے آراستہ ہو جاتے ہیں وہ علم لدنی سے بھی آراستہ ہو جاتے ہیں. उनको इल्मे लुदुनी अता होता है। कैसे अता होता है? वो कानून बता दिया कि अंबिया कराम को ये वही के जरिए अता होता है और औलिया कराम में अंबिया कराम की निस्बत से इल्हाम होता है। अब ये फर्क आपको क्लियर हो गया कि इल्हाम और वही में क्या फर्क है। वही अंबिया कराम के लिए मुख्तस है, इल्हाम हर बंदे के लिए मुख्तस है। ये अल्लाह रब्बे करीम सबको करते हैं, सब पे इल्हामी कैफियत तारी होती है। ये एक जनरल फॉर्म है। और तीसरा इल्मे हजूरी। अब इल्मे हजूरी क्या है? ये लफ्ज हजूर, हजूर हजर से है। हजर मैंने एक है सफर, एक है हजर। हजर मैंने रुकना भी है और एक चीज है हाजर होना, किसी चीज की मौजूदगी का प्रेजेंट होना, मौजूदगी मौजूद होना, ये है हजर। और हाजरी का मतलब हो गया कि कोई चीज आपके सामने, तो जो चीज जिस तरह से अल्लाह के सामने हाजिर है। देखिए ना, मेरे और आपके लिए जो चीजें गैब हैं, जो चीजें गयाब में हैं, वो मेरा और आपका गैब हैं, लेकिन अल्लाह का तो हजूर है, यानी अल्लाह के तो सामने हाजिर हैं। तो जिस तरह से वो अल्लाह के सामने हाजिर हैं, अगर कोई बंदा अल्लाह की दी हुई तौफीक से इस काबिल हो जाए कि वो उनको उस नजर से देखे जिस तरह से अल्लाह के सामने वो हाजिर हैं, तो क्या होगा कि वो इल्म इल्मे हजूरी कहलाएगा। ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं इससे पिछले चैप्टर में कि जहां पे अल्लाह तबारक व ताला के बारे में ये साफ लिखा गया कि ये नजर के कानून में बताया कि हम अल्लाह के देखने को देख रहे हैं। ये जुमला वहां हमने पढ़ा कि अल्लाह ने अपने देखने को देखा और कायनात ने अल्लाह के देखने को देखा। अब हमने अल्लाह के देखने को देखना छोड़कर अपने देखने को देखना शुरू किया हुआ है, बस इतना सा फर्क है। जब ये फर्क आप डिलीट करते चले जाएंगे तो रफ्ता रफ्ता हमारा शऊर इस काबिल हो जाएगा कि वो अल्लाह के देखने को उसी तरह देखे जिस तरह अल्लाह हमें दिखाना चाहता है। देखे ना, हमें दिखाना चाहता है तभी तो हमें बसारत अता की। तो यहां तक ये तीन किस्म के अलूम पे तबसरा हो गया। यहां रुक जाते हैं क्योंकि इससे आगे जो है ये चार दायरों का जिक्र आएगा और फिर ये बात, तो यहां भी वक्त इतना नहीं रहा, मेरा ख्याल है यहीं रुक जाते हैं। ठीक है जी, तो कल इंशाल्लाह यहां से आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश, आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, टेक ए गुड, टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ जी।